ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर कल शाम जामनगर पहुंचे। वे अगले 2 दिनों के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी आज पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वनतारा जाएंगे। इसके बाद वे गिर नेशनल पार्क सासन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इस बोर्ड में सेना प्रमुख, कई राज्यों के प्रमुख, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्य जीव वार्डन और कई राज्यों के सचिवों सहित 47 सदस्य हैं। श्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन की यात्रा पर केरल जाएंगे। इस दौरान वे तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित 4th पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान माला में व्याख्यान देंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंद्र सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की।
जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भेंट की। बैठक में ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ये ऋण यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। ये बैठक अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव के एक दिन बाद हुई है। चर्चा में प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के अटूट समर्थन का वायदा किया। उन्होंने यूक्रेन में स्थायी शांति प्राप्त करने की दिशा में काम करने के ब्रिटेन का संकल्प व्यक्त किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समर्थन के लिए ब्रिटेन का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की आज किंग चार्ल्स तृतीय और यूरोपीय सहयोगियों के समूह से मुलाकात करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य नेता भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। गजा में इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम का पहला चरण कल समाप्त हो गया। इसराइल के युद्धविराम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज करने के बाद हमास ने कहा है कि युद्धविराम के दूसरे चरण के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके साथ ही युद्धविराम वार्ता के लिए इसराइल का प्रतिनिधिमंडल काहिरा से लौट आया। पहले चरण का युद्ध विराम 19 जनवरी को शुरू हुआ था और परिणाम स्वरूप इसराइल ने लगभग 1,900 फलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। फलिस्तीन ने बदले में 33 इसराइली बंधकों को छोड़ा था। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के समाचार पत्रों ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ मेला की सराहना की है। गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, गल्फ टुडे और द नेशनल जैसे समाचार पत्रों ने इस आयोजन की सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक महत्व और तकनीकी प्रगति पर विशेष ध्यान दिया और कहा कि इसी वजह ये सुचारू संपन्न हो पाया है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। आज पहला रोजा है। लोग रमजान महीने में तरावी की विशेष नमाज अदा करते हैं। रमजान महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाती है। खाड़ी देशों में रमजान का महीना कल से ही शुरू हो गया है। देश के सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह इस वर्ष फरवरी में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है। महिला प्रीमियर लीग टी20 क्रिकेट में कल रात बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली ने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने 148 रन का लक्ष्य केवल 15 ओवर और 3 गेंद में हासिल कर लिया। शिफाली वर्मा ने 80 और जुनासेन ने 61 रन बनाए। शिफाली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। इस मैच की विजेता मंगलवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। हारने वाली टीम का बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा। इस बीच कल रात कराची में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।